हाँ भाई, अब सबक चालू थी क्या भाई? जी आइयो, ठीक से। हाँ बस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، جي تو دیکھو کل جو بات چل رہی تھی، وہ تھا اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کا مختصر راستہ، شارٹ کٹ راستہ، اور وہ ہے اتباع سنت۔ اتباع سنت، تو فرمایا یہ راستہ جو ہے اتباع سنت کا، وہ یہ شیطانی وسائل سے بہت محفوظ ہے۔ تو ابھی بات چلی تھی چپ، کہ ہمیں جو تبدیلی لانی ہے نا اپنے اندر، ایک دم سے نہیں لانی، ایک دم سے لائیں گے تو کیا ہوگا، انگلیاں اٹھتی ہے اور چپکے چپکے ہوتی ہے تو کچھ بھی پتا نہیں چلتا۔ ہاں، تو اچانک انقلاب آ گیا تو انگلیاں اٹھنا فتنہ ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح تبدیلی لاؤ جس طرح بچہ بالغ ہو جاتا ہے، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ بچہ کس دن بالغ ہو۔ ایک دن گزرتا چلا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے بچہ بالغ ہو گیا، کسی کو پتا نہیں چلا کہ کون سا وقت کون سا دن تھا جو بالغ ہوا۔ اس طرح تبدیلی لاؤ، اور یہ تبدیلی اس طرح آتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ یہ اس طرح آتی ہے کہ ہر چیز میں اس بات کا اہتمام کرو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ سارے دین کے، سارے احکامات کا، ساری شریعت اور طریقت کا حاصل اگر کچھ ہے تو وہ اتباع سنت ہے۔ دیکھا، سارے دین کا، سارے احکامات کا، ساری شریعت اور طریقت کا حاصل اگر کچھ ہے تو وہ اتباع سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوث اسی لیے فرمایا تھا کہ تم ان کو دیکھو اور ان کی نقل اتارو اور ان کی اتباع کرو۔ ان کو دیکھو، ان کی نقل اتارو، یعنی وہی اتباع کرو، نقل کر اتارو۔ تو کیونکہ انسان چاہتا ہے نا کوئی نہ کوئی ایگزامپل کہ بھائی میں کیسے کروں۔ کھانا پکانا سیکھنا ہو تو بولے مجھے سکھاؤ، تو کوئی پکانے والے کے پاس سیکھ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ بن کر آئے، ہر چیز میں، شادی بیاہ میں ہو، کھانے پینے میں ہو، بات کرنے میں ہو، کپڑے پہننے میں، ہر چیز میں اتباع۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر اور شریعت پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر شریعت پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ارے کوئی مشکل نہیں، ارے کوئی مشکل نہیں، اپنا ایک عمل بنا لو، اپنا ایک طریقہ عمل بنا لو، اور روزانہ اپنا جائزہ لو، اپنے آپ کو دیکھو۔ اور میں نے تمہارے لیے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک ڈائری بنا دی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم، جو پہلے ہم پڑھا چکے ہیں۔ تو یہ ڈائری جو ہے، یہ کہہ رہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک ڈائری لکھی ہے، ایک کتاب لکھی ہے، روز اس کو دیکھتے جاؤ کہ کس کس کام میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں اور کس کام میں نہیں کر رہے۔ بس جس کام میں سنت کا اتباع نہیں کر رہے ہیں، جس کام میں سنت کا اتباع نہیں کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے ان میں بھی اتباع کرتے چلے جاؤ، اس طرح رفتہ رفتہ بالغ ہو جاؤں گے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کیا سے کیا ہو گیا، یعنی روحانی بالغ ہو جائیں گے، تعلق مل جائے گا، محبوبیت مل جائے گی اور پتا بھی نہیں چلے گا، تو انگلیاں نہیں اٹھے گی، لوگ تو سمجھے گے کہ ہمارے سامنے کا تو ہے، ہمارے سامنے پتا ہے کیا کرتا ہے، اور جو اچانک بن جاتا ہے نا اس پر انگلیاں اٹھتی ہے کہ اچانک اس کی مقبولیت بڑھ گئی، اچانک اس کی بات میں کوئی اثر آ گیا اور اس پر لوگ اچانک لوگ متوجہ ہو گئے، تو پھر یہ ہے نا وہ آخر میں خطرہ بن جاتا ہے. جی یاد رکھنا. دیکھیے اگر نل سے پانی ٹپک رہا ہو اور نیچے پتھر رکھا ہوا ہو تو پانی ٹپکتے ہوئے ایک دن گزرا، دو دن گزرے، ایک ہفتہ، ایک مہینہ گزر گیا، رفتہ رفتہ وہ پانی پتھر میں سوراخ کر دے گا. اگر اس قطرے کو دیکھو تو اس میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ پتھر کے اندر سوراخ کر دے، اور نہ کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ پانی کا کون سا قطرہ تھا جس نے پتھر میں سوراخ کیا. ایک تو دیکھو تو وہ پانی کے قطرے میں کوئی طاقت نہیں جو پتھر میں سوراخ کرے، اور دوسری بات ہے کہ سوراخ تو ہو گیا، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سے قطرے نے سوراخ کیا، بلکہ ہر قطرہ اپنی جگہ پر صحیح تھا، اس لیے کوئی ایک قطرے کا نام نہیں لے سکتے، پانی کا کون سا قطرہ تھا جس نے پتھر میں سوراخ کیا، لیکن مجموعی طور پر سارے قطرے مل کر اس پتھر میں سوراخ کر دیتے. اب اگر اس پر 1,00,000 قطرے گرے تو ہر ایک قیمتی تھا. تو فرمایا اس میں سوراخ کر دیتے. اس طرح اتباع سنت والے اعمال وہ قطرے کی طرح بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، کہ تم نے دعا پڑھ لی، دائیں پیر سے گھر میں داخل ہو گئے، کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا، اب بظاہر چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کا مجموعہ مل کر سوراخ کر دیتا ہے، اللہ کا تعلق مل جاتا ہے، اور پھر وہ دین دل میں جاگزی ہو جاتا ہے، وہ دین جو ہے وہ دل میں اتر جاتا ہے، دل میں سوراخ کر دیا یعنی دین اتر گئے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے دوسرے راستوں کو چھوڑ کر اتباع سنت کا راستہ اپنایا ہے اور اسی کو اپنا مقصود زندگی بنایا ہے، اسی کو اپنا زندگی مقصود زندگی بنایا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے علوم ظاہرہ کی تکمیل کر لی، علوم ظاہرہ کی تکمیل کر لی تو میں نے سنا کہ کچھ علوم باطنیہ بھی ہوتے ہیں جو صوفیاء کرام کے پاس ہے، تو میں نے سوچا کہ وہ بھی دیکھنے چاہیے کہ وہ کیا ہے، چنانچہ میں صوفیاء کرام کے پاس گیا. معلوم ہوا کہ صوفیاء میں 4 قسم کے سلسلے ہیں، جب گیا تو پتا چلا کتنے سلسلے ہیں، 4 قسم کے سلسلے ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور قادریہ، پھر ہر ایک کے الگ شاخے ہیں. میں نے ہر ایک سلسلے والوں کے پاس جا کر مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتے، تو ہمارا بھی جو نقشبندی سلسلہ ہے وہ وہیں سے نکلا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں جب علوم ظاہرہ سے پڑھ لیا، یعنی قرآن اور حدیث کا جو علوم ہے ظاہری، عالم بننا، وہ میں جب فارغ ہو گیا تو میں نے سنا کہ کچھ علوم باطنہ بھی ہے وہ صوفیاء کرام کے پاس ملتے ہیں، تو میں ان کے پاس گیا تو اس میں بھی 4 قسم کے سلسلے ہیں، نقشبندی، سہروردی، قادریہ اور چشتیہ، پھر ہر ایک کی الگ الگ شاخے ہیں، برانچ ہے. تو ایک سلسلے والوں کے پاس جا کر ان کے علوم حاصل کیے، تو میں نے ایک کے پاس گیا وہاں کے علوم حاصل، اور ہر ایک سلسلے والوں نے جو طریقے مقرر کیے ہوئے تھے ان طریقوں کو نہ صرف یہ کہ دیکھا بلکہ ہر ایک طریقے کو میں برتا، یعنی ہر ایک کے پاس گئے، ہر بزرگ کے پاس جا کر ہر ایک کے پاس انہوں نے وہ طریقہ سیکھا اور اس پر عمل کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک بہت اونچے مقام عطا فرمایا. چاروں سلسلوں کے بزرگوں کے پاس گئے، ان کے پاس گئے نہیں، ان کے پاس سیکھا اور اس پر عمل کیا، فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت اونچا مقام عطا فرمایا. پھر اس میں ترقی کرتے کرتے، پھر اس میں بھی ترقی ہوتی رہی، ترقی کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچا कि उलमाए जाहिर तो उसे क्या समझेंगे, समझे? उलमाए जाहिर तो उसे क्या समझेंगे, उलमाए बातिन भी उसको समझने से कासिर रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीर। फरमाया मैं ऐसे मकाम पर पहुंचा, देखो इसको कहते तरक्की, और ऐसा ऊंचा मकाम मिला कि उलमाए जाहिर तो समझो उनकी बात को समझ ही नहीं सकते, लेकिन उलमाए बातिन जो है फरमाया वो भी इस बात को नहीं समझ सकते जो जिस मकाम पर मैं पहुंचा। लेकिन फिर हजरत ने फरमाया लेकिन मैं सब मकामात तय करने के बाद, सब मकामात तय करने के बाद, सारे मकाम गए, अब वो मकाम तो आप समझ ही नहीं सकोगे क्या क्या मकामात आते हैं, उसकी तरफ जाना भी नहीं है, लेकिन ये सुनो कि सब मकामात तय करने के बाद एक दुआ करता, और जो शख्स इस दुआ पर आमीन कहेगा इंशाअल्लाह उसके हक में भी ये दुआ कबूल हो जाएगी। जो इस पर आमीन कहेगा तो उसके भी ये दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ पर जो आमीन कहेगा इंशाअल्लाह उसके हक में भी ये दुआ कबूल हो जाएगी। वो दुआ ये है, कौन? डॉक्टर अब्दुल हई साहब फरमा रहे, मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाह का एक मकोला सुना रहे कि मैं उलूम जाहिरा से फारिग हुआ, बातिना में गया, हर एक के पास गया, और जाने के बाद अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता फरमाया, सारे मकामात देखने के बाद मैं इस जगह पर गया और फिर एक दुआ मांगता हूं। क्या है दुआ, सुन लो, पहले भी किसी दर्स में दुआ गुजर चुकी है, ए अल्लाह मुझे इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमाइए, आमीन। अरे बोलो आमीन अपने अपने जवान में, ए अल्लाह मुझे इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमाइए, आमीन। ए अल्लाह मुझे इत्तिबाए सुन्नत पर जिंदा रखिए, आमीन। ए अल्लाह मुझे इत्तिबाए सुन्नत पर मौत अता फरमाइए, आमीन। जी लिखने की जरूरत नहीं, अंदर अंदर बोल दो, लिखने अगर बोला नहीं है ना, खाली लिखा है तो भी इतना वो नहीं है कबूलियत, बोलने पर कबूलियत है, वो दिल में उतरती है, इसलिए बोलो भी और लिखो तो ठीक है। ए अल्लाह मुझे इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमाइए, आमीन। ए अल्लाह मुझे इत्तिबाए सुन्नत पर जिंदा रखिए, आमीन। ए अल्लाह मुझे इत्तिबाए सुन्नत पर मौत अता फरमाइए, आमीन। ये नबी अलैहिस्सलाम की भी दुआ है, अल्लाहुम्मा शुर, हाँ नहीं अल्लाह मशुन्नी फी जुमरतिल मसाकीन, खबर देना पर्सन। हाँ तो बहरहाल तो फरमाए मैं मकामात तय करने के बाद एक दुआ करता हूं, और जो शख्स इस दुआ पर आमीन कहेगा इंशाल्लाह उसके हक में भी दुआ कबूल हो जाएगी, दुआ होगी। बहरहाल अस्कार में जो मासूर अस्कार है, अस्कार में जो मासूर अस्कार है और दुआओं में जो मासूर दुआएं हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, उनमें जो नूर और बरकत है वो नूर और बरकत दूसरे अस्कार में नहीं है। इसलिए हमारे हजरत पीर साहब फरमाते हैं कि नक्शबंदी सिलसिला भी इत्तेबाए सुन्नत से बहुत ज्यादा करीब है, और मुजद्दिद अल्फ सानी ने फरमाया मैं बहुत मकामात तय कर चुका हूं लेकिन इत्तिबाए सुन्नत ही के आखिर में दुआ मांगी, क्योंकि इसी में ही कामयाबी है। देखो कि फरमा मुझे इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमाइए, आमीन। मुझे इत्तिबाए सुन्नत पर जिंदा रखिए, आमीन। और मुझे इत्तिबाए सुन्नत पर मौत अता फरमाइए। देखो मकामात तय करने के बाद भी इत्तिबाए सुन्नत ही पर आ गई, फरमा इससे बड़े ऊंचे मकामात ही नहीं है, क्योंकि वो तय करने के बाद देखा ना किस मकाम मिलेगा कैसे, उन्होंने तो मुजाहदे से तय किया है लेकिन उम्मत के लिए रास्ता आसान कर गए, है ना, इत्तिबाए सुन्नत से तुम भी उस मकाम तक पहुंच जाओ। तो फरमाया नूर और बरकत ज्यादा दूसरे अस्कार में नहीं है, जो अस्कार सुन्नत से साबित है उसमें। दुरूद मासूर पढ़ने चाहिए, आज लोग दूसरे दुरूद की तलाश में रहते हैं, कौन सा दुरूद, दुरूद लखी, दुरूद ताज, इसका नाम तो बहुत सुना होगा। हाँ तो फरमा आज लोग दूसरे दुरूद की तलाश में रहते हैं, हालांकि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ के बहुत से तरीके बता दिए, जिस पर अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी किताब लिख दी। इस किताब का नाम है अल कौलुल बदीअ फी सलातिल अल हबीब शफी, ये किताब का नाम अल कौलुल बदीअ फी सलाति अल हबीब शफी। इस किताब में दुरूद शरीफ के सैकड़ों अल्फाज जमा फरमा दिए, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, اس لیے اپنی طرف سے درود شریف گھڑنے کی ضرورت نہیں, درود شریف گھڑنے کی ضرورت نہیں. لہذا معصور اذکار, معصور دعائیں اور معصور درود ہی پڑھنے چاہیے, ان میں بڑی برکت ہے. ادھر ادھر کی درودیں نہ پڑھے. مبتدی کو ذکر اور منتہی کو تلاوت, یہ پہلے بھی گیا تھا. آگے حضرت والا نے فرمایا, آگے حضرت والا نے فرمایا, یعنی حضرت تھانی رحمت اللہ, مبتدی کے لیے ذکر سے زیادہ شغف مناسب ہے اور منتہی کے لیے تلاوت ہے. پتا ہے پہلے گزرتا, منتہی کے لیے تلاوت اور نماز تھا اور مبتدی کے لیے ذکر. ابتدا میں چونکہ مبتدی کا دل نہیں لگتا, ہاں اس کے لیے ذکر کرنا مناسب ہے, اس لیے کہ اس میں اس کا دل لگ جاتا ہے. لیکن منتہی کے لیے تلاوت مناسب ہے کہ وہ جتنی تلاوت کی کثرت کرے اتنا ہی اس کے لیے فائدہ مند ہے, یہ منتہی کے لیے. دعائے معصور یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو دعائے معصور کہتے ہیں. اس کا نام معصور بھی ہے, مسنون بھی ہے. مسنون بھی دعائے مسنون, آپ نے دیکھا مسنون اور مقبول دعائے آپ نے دیکھ سنا ہوگا, تو وہی اسی کو معصور بھی کہتے ہیں سنت کو. جی وہ جتنی تلاوت کی کثرت کے اتنا ہی اس کے لیے فائدہ مند, دیکھو منتہی کے لیے. اور آج ہم نے ابتدائی میں تلاوت زیادہ کر لی تو اب وہ اتنا نفع نہیں دے گا. پہلے ذکر سے اپنے آپ کو بنانا ہے, چھوٹی چھوٹی دوائی پہلے کھا لے پھر بڑی دوائی, زیادہ پاور والی دوا ہے نا قرآن شریف کی تلاوت. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی جی ابھی حضرت والا آگے فرماتے ہیں, اگر رات کو بیدار ہونے کا یقین نہ ہو تو بعد عشاء سب معمولات کو ادا کر لینا احسن ہے. رات میں جاگنے کا یعنی یقین نہیں ہے تو عشاء کے بعد سب معمولات کو ادا کر لینا احسن ہے, یعنی اچھا ہے. دیکھو رات کو جب آنکھ کھلے استغفار کر لو, یعنی بعض مرتبہ تہجد کی نماز کے ساتھ بعض معمولات مقرر کر لیے جاتے ہیں. ان کے بارے میں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آدمی آخری شب میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی, معمولات ادا کرنے کی عادت ڈالے. لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے بڑے آسان نسخے تجویز فرما دیے. چنانچہ جن لوگوں کو آخری شب میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے یا کسی وجہ سے ان کے لیے آخری شب میں اٹھنا مشکل ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے ایک طریقہ تو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ جب کبھی رات کے وقت آنکھ کھلے تو اس وقت اٹھ کر بستر پر تھوڑی دیر بیٹھ جائے, اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور کچھ دعا کر لے, اور کم از کم 3 بار یہی دعا کر لے, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. یہ کہہ دے, یا تو یہی کہہ دے اردو, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, بس ابھی اتنا تو آسان ہے, یہی کہہ دو. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ رات کے وقت اللہ تعالی کا منادی آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں. اب منادی تو آواز لگا رہا ہے لیکن آدمی بے نیاز ہو کر بیٹھا رہے, کچھ مانگے ہی نہیں اللہ تعالیٰ, وہاں تو آواز لگا بھائی مانگ لو ہے کوئی مانگنے والا, اور یہاں پر ہمیں اٹھے ہیں ارے خالی 3 مرتبہ کہنا ہے. اور نماز وغیرہ بھی نہ بھی پڑھی جا سکے تو کم از کم تھوڑی دیر بیٹھ کر دعا ہی کر لے, اور دعا مانگنے کے بعد پھر سو جائے. اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, بس. تو وہاں سے تو منادی پکار رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا, اس نے مانگ لیا, کیا مانگا کہ اللہ معاف کر دے, اللہ تعالیٰ فرمائے جاؤ مغفرت کر دی. اس لیے تھوڑی دیر اتنا مانگ لے, کتنا آسان کر دیا, کتنا آسان, سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھ کھلے گی تو یہ کروں گا, اچھا تو کم از کم تھوڑی دیر کے لیے کر لے, اور دعا مانگنے کے بعد پھر سو جائے, لیکن اس بات کا التزام کر لے کہ جب بھی آنکھ کھلے گی تو یہ کروں گا. لہذا جو شخص اس بات کا التزام کر لے گا یعنی پکڑ لے گا, اس کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تہجد پڑھنے کی ضرور توفیق ہو جائے گی. एक नेकी दूसरी नेकी को खींचती है। अल्लाह ताला ने नेकियों में खासियत रखी है कि एक नेकी दूसरी नेकी को खींचती है। लिहाजा जब आंख खुली और उठकर बैठ गया, दुआ कर ली और दिल में ईमान है, तो उस वक्त उसको एक ख्याल जरूर आएगा कि अब मैं उठ तो गया हूं, नींद भी हो गई है, चलो 2-4 रकात पढ़ ही लूं। इस तरह अल्लाह ताला उसको तौफीक अता फरमा देते हैं। और दूसरा तरीका हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया, ये तो डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बहुत आसान तरतीब। और दूसरा तरीका हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि अगर रात को उठने की हिम्मत नहीं तो होती तो ईशा के फर्ज और सुन्नत के बाद और वितर से पहले कुछ रकाते तहज्जुद की नीयत से पढ़ लिया करे। ये तरीका हमारे सारे बुजुर्ग बताते चले आए हैं। ये तरीका बेअसल नहीं है, बल्कि खुद हजरत वाला ने इस मलफूज के तहत मौजमे कबीर के वास्ते से हदीस नकल फरमाई, बेदलील नहीं दलील। अन अयास इब्न मुआविया मुजनी अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال ला बुद मिन सलाति बिलैल ولو حلب شات وما كان بعد صلاة العشاء الآخرة فهو من الليل। हजरत अयास बिन मुआविया अल-मुज़नी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को थोड़ी बहुत नमाज जरूर पढ़ो, चाहे उतनी देर के लिए क्यों न हो जितनी देर में बकरी का दूध दोया जाता है, इतनी देर के लिए ही क्यों ना हो, यानी चाहे थोड़ी देर के लिए हो, और ईशा के बाद जो नमाज पढ़ी जाएगी वो रात में ही शुमार होगी। यह फरमाया ना, रात में थोड़ी नमाज पढ़ लिया करो, तो फरमाया ईशा के बाद जो नमाज पढ़ी जाएगी वो रात ही में शुमार होगी। समझ में आ गई, तो दलील हो गई ना, इतनी देर के लिए भी क्यों ना हो तो वो रात में ही शुमार। हाँ, ईशा से पहले पढ़ेगा तो रात, ईशा के बाद। कुछ इबादत रात की तारीकी में, एक हदीस में हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमाल बयान फरमाए जिनसे इंसान को जन्नत हासिल होती। कई अमाल बयान करने के बाद आखिर में खूबसूरत लफ्ज इरशाद फरमाया, वह शैउन मिनत मिनत दुल जती, यानी थोड़ा सा हिस्सा रात के अंधेरे में, यानी रात के अंधेरे में अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होकर कुछ अर्ज मारूज कर लेना भी इन अमाल में दाखिल है जो इंसान को जन्नत में पहुंचा देते। लिहाजा ये शय उन मिनत दुल जती आखिर शब में न हो तो अव्वल शब में ही कर ले, ईशा के बाद ही कर ले। चुनाचे ऊपर जो हदीस बयान की उसमें साफ सराहत है, सराहत है कि वमा कान बाद सलात इशाई, यानी जो ईशा के बाद का वक्त है वो सब रात का हिस्सा है। ईशा इल आखिरत फहो मिनल लैल, वो सब रात का हिस्सा है, लिहाजा ईशा के बाद जो भी इबादत की जाएगी वो रात ही के कयाम में शुमार होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात कही। इसीलिए फुकहाए किराम ने फरमाया कि तहज्जुद में अफजल यह है कि उसको आखिरी शब में पढ़ा जाए, अफजल। और अगर रात के दो हिस्से किए जाए तो निसफे सानी अफजल है। बहरहाल अफजल यह है कि आधी रात के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाए, और ज्यादा अफजल यह है कि कुछ देर सोकर उठने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाए। इसलिए कि लफ्ज तहज्जुद से निकला है, हुजूद से निकला है, जिसके माना है रात को सोना, मिसबाहुल लोकात लफ्ज हजत। लिहाजा सोकर उठने के बाद तहज्जुद पढ़ना अफजल है, लेकिन अगर किसी वजह से रात को उठकर पढ़ना मुश्किल हो तो अव्वल शब में ही पढ़ ले ताकि उसकी फजीलत से महरूम न रहे। अलबत्ता ये नियत रखे कि अगर आखिरी शब में कुछ आंख खुल गई तो उस वक्त भी पढ़ लूंगा, वरना ये रकात तो उसके काय मुकाम हो जाएगी। कितना आसान कर दिया, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। वितर के बाद जो 2 रकात नफल पढ़ी जाती है वितर के बाद, उनके बारे में एक हदीस में आया है कि उनको इसलिए पढ़ा जाता है कि आखिरी शब में आंख न खुल सके तो इंसान तहज्जुद से महरूम न रहे। इससे मालूम हुआ कि अव्वल शब में तहज्जुद की नियत से चंद रकात पढ़ने से भी इंशाअल्लाह तहज्जुद की फजीलत और सवाब हासिल हो जाएगा। हम जैसे कमजोरों के लिए कितना आसान कर दिया। सारी चीजें इतनी आसान आसान करके बताई है। अजीब, मैंने एक मरतबा अपने शेख हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह को खत में लिखा कि हजरत, दिल ये चाहता है कि शय मिनत दुलजा की तौफीक हो जाए, लेकिन अपनी तबीयी कमजोरी और नींद की बेकायदगी की वजह से मौका नहीं मिलता। हजरत ने जवाब में लिखा कि ईशा के साथ तो आप पढ़ लेते हैं, ईशा के साथ तो आप पढ़ लेते हैं और वो शय मिनत दुलजा के कायम मकाम है। बहरहाल अल्लाह की रहमत से जो भी मिल जाए वो नेमत है। अगर आखिरी शब में उठने का मौका नहीं मिलता तो अव्वल शब में ही चंद रकात पढ़ लेनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत से कयामुल लेल ही की तौफीक अता फरमाए और उसकी बरकत से महरूम न फरमाए, क्योंकि उसकी बहुत बरकत। तो अब उसकी बरकत, क्योंकि अभी सुबह में उठना है जल्दी तो वो हो नहीं पाता है, तो हजरत ने कितनी आसान कर दी कि बरकत तो हासिल कर लो, चाहे अफजलियत न हो तो अदना दर्जे में भी अल्लाह ताला हमारी कमजोरी के बिना पर अफजलियत भी अता फरमा दे। साथ में हजरत वाला ने यह भी फरमा लिया, ये तो तहज्जुद के बारे में है, कि वो मामूला जो तहज्जुद ही में अदा करने के लिए करने के है, मसलन बाज बुजुर्गों ने फरमाया कि 12 तस्बीह का सबसे अच्छा वक्त तहज्जुद का वक्त है ना, उस वक्त पढ़ना सबसे ज्यादा नाफे होता है। लेकिन अगर तहज्जुद के वक्त उठना नहीं होता तो ईशा के बाद ही इन मामूलात को पूरा कर ले, इंशाअल्लाह तहज्जुद के वक्त पढ़ने के कायम मुकाम हो जाएगा। अल्लाह, देखा, जो सुबह में नहीं होता है तो रात में पढ़ ले। हजरत वाला ने इरशाद फरमाया, एक और मलफूज है, अगर बवजह कसरत कारोबार के, अल्लाह इनको वाकईतन बहुत बेहतरीन पूरी उम्मत की तरफ से बदला था फरमाए, इतना आसान कर दिया, अगर बवजह कसरत कारोबार के मामूलात व औराद पूरा न कर सके तो जितना हो सके करता रहे, जो कमी रह जाए इस्तिग़फ़ार और नदामत से उसकी तलाफी करे, काम बनाने के लिए यही काफी है। देखो कितना आसान कर दिया। देखो बेचारा बाज मरता कोई आदमी मशगूल होता है, अभी कोई मुलाजिमत करता है, अब सुबह से शाम तक थकता है, अब वो ज्यादा मामूलात नहीं करता, फरमाया जितना हो सके कर ले, तो बाकी नदामत और इस्तिग़फ़ार जो उसको दिल में हसरत है ना, गई पिछली मरतबा पिछले सबक में कि जो हसरत है ना, हसरते नायाफ्त जो है, तो वो उसके काम बनाने के लिए काफी हो जाता है। यानी इंसान जितने मामूलात और औराद मुकरर करे तो ये सोचकर मुकरर करे कि मुझे मामूलात निभाने हैं, लिहाजा उतने ही मुकरर करे जितने निभा सके। लेकिन चूंकि हर इंसान के साथ कुछ न कुछ अवारिज लगे हुए, लिहाजा अगर किसी आरिज की वजह से इंसान अपना मामूल पूरा न कर सके तो उसकी वजह से मायूस न हो, बल्कि जितना कर सकता हो वो कर ले और बाकी के छूटने पर इस्तिग़फार और नदामत करे। बहुत आसान। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, जो मामूल मुकर्रर कर लिया है तो अब उसको छोड़ो मत, अलबत्ता वक्त अलबत्ता बवक्त जरूरत उसकी तादाद में कमी कर लो, तादाद में कमी कर। मसलन वही मैंने बताया कि 100 मरतबा तस्बीह पढ़ते थे, है ना, तो फरमाया छोड़ो मत, कितना, 10 मरतबा पढ़ लो। अरे 10 मरतबा तो आसान है ना, बल्कि अभी तो मौलाना इलियास गुम्मन साहब दामत बरका तुम आए थे, उन्होंने फरमाया 3 मरतबा पढ़ लो। हाँ इतना बताया, फरमाया 3 मरतबा पढ़ लो तो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन छोड़ो मत। अल्लाह, देखो कितना आसान, छोड़ो मत। इसलिए मुराकबे में बताया कि भाई कोई अगर 1 घंटा कर रहा है, कोई आधा घंटा कर रहा है, कोई मशगूली कोई नहीं कर सके, 5 मिनट कर लो, लेकिन थोड़ी देर बैठकर 5 मिनट देखकर फिर सो जाओ, छोड़ो मत। देखो कितना बता, तो ये मतलब छोड़ो मत, अलबत्ता बवक्ते जरूर उसकी तादाद में कमी कर लो। क्या मतलब तादाद में, यानी जो 100 100, अभी 3 तस्बीहात हम पढ़ते हैं मिसाल के तौर पर, एक अस्तगफार की और एक दुरूद शरीफ की और एक तीसरे कलमे की, तो 100 100 मरतबा पढ़ते हैं, अब अगर किसी जरूरत की वजह से हम नहीं करते तो तीनों तस्बीह उन्हें एक दस दस मरतबा पढ़ लो तो हो गया। तो अभी आप तो इसी को पकड़ लोगे नहीं, बोले चलो मौलाना ने बहुत आसान कर दिया था। अरे नहीं, बवक्ते जरूरत। अब वो जरूरत अल्लाह जानता है कि तुम अल्लाह को धोखा दे रहे कि क्या कर रहे, वो तो कोई देखने वाला नहीं। इसलिए कोशिश तो करे कि हम पूरी करें, नहीं हो सके तो उसमें कम। तो इसलिए फरमाया तादाद में कमी कर, मसलन मामूल में 100 मरतबा पढ़ना था तो अब किसी आरिज की वजह से 100 मरतबा पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो 50 मरतबा पढ़ लो, 50 मरतबा पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो 33 मरतबा पढ़ लो, 33 मरतबा मुश्किल हो गया तो 11 मरतबा पढ़ लो, 11 मरतबा मुश्किल हो रहा है तो 7 मरतबा पढ़ लो, और 7 मरतबा मुश्किल हो रहा है तो 3 मरतबा पढ़ लो। देखो तो 7-3 मरतबा पढ़ लो और ये तय कर लो कि उस वक्त तक बिस्तर पर नहीं जाऊंगा जब तक 3-3 मरतबा ये मामूल पूरा नहीं कर लूंगा। लेकिन छोड़ो नहीं, इसलिए कि छोड़ने में बड़ी बेबरकती है, और अल्लाह ताला की रहमत से ये उम्मीद रखो कि अल्लाह ताला इस कम मिकदार से भी काम बना देंगे। हाय हाय, वाह वाह, वाह रे वाह, क्या बात बताई। एक तरफ तो कम मिकदार पर अमल कर लो और दूसरी तरफ ये करो कि मामूल की जिस मिकदार को छोड़ दिया है, तो छूट तो गया ना, कितना छूट, 3 मरतबा पढ़ा तो 96 छूट गया, 7 छूट गया। तो जिसकी मिकदार को छोड़ दिया उस पर नदामत, इस्तिगफार, शिकस्तगी, आजीजी का इजहार करो कि अल्लाह क्या करो। अल्लाह ताला से कहो कि अल्लाह मुझसे इस पर अमल नहीं बन पड़ा, तो फिर ये आजीजी और ये टूटना इस्तिगफार वो बाकी की तलाफी कर देगा। ये इस्तिगफार बड़ी अजीब और गरीब चीज है, जो अमल इंसान से छूट जाए, मिकदार में छूट जाए, कैफियत के एतबार से छूट जाए। मसलन कोई इबादत जितनी करनी थी उतनी नहीं की, या जैसी करनी थी वैसी नहीं की, तो दोनों की तलाफी इस्तिगफार से हो जाती। मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदिल्लाहु अन्हु का एक इरशाद अपने शेख हजरत डॉक्टर अब्दुल हय साहब रहमतुल्लाह अलैह से सुना। किसी किताब में नजर से नहीं गुजरा, लेकिन जाहिर है कि किसी किताब ही से हजरत ने नकल किया होगा। वो ये कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदिल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स कोई भी इबादत करने के बाद ये दो जुमले कह दे, एक अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरा अस्तग़फिरुल्लाह, तो शैतान कहता है कि उसने मेरी कमर तोड़ दी। मसला नमाज पढ़ी और नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तग़फिरुल्लाह कह दिया, तो शैतान कहता है उसने मेरी कमर तोड़ दी। क्यों? वजह उसकी यह है कि शैतान के दाव दाव दो तरह के होते हैं। शैतान के फंसाने के दाव दो तरह के होते हैं। एक दाव ये होता है कि जब इंसान नमाज पढ़कर फारिग होता है तो शैतान उससे कहता है कि तूने क्या नमाज पढ़ी, तूने तो टक्कर है मारी, तो क्या तू क्या और तेरी नमाज क्या, ये तेरी नमाज तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि नमाज के अंदर तेरा ध्यान कहीं था, तेरा दिल कहीं था, न तुझसे नमाज के आदाब पूरे हुए, न शराइत पूरी हुई, इसलिए नमाज से तुझे कोई अजर सवाब हासिल नहीं होगा, ये दिल में डालता है, नहीं होगा, तेरी ये नमाज बेकार है, वगैरह वगैरह। इन सब बातों के जरिए शैतान उसके अंदर नमाज से मायूसी पैदा कर देता है। इस मायूसी का इलाज ये है कि नमाज के बाद कहो अस्तग़फिरुल्लाह, यानी अल्लाह इस नमाज में जो कोताही हुई मैं इसे मगफिरत मांगता हूँ, उस पर इस्तिगफार करता हूँ। उसका नतीजा ये होगा कि जो कोताही हुई थी अल्लाह ताला उसको कामिल बना देंगे, इसलिए कि इस्तिगफार हर कोताह अमल को कामिल बनाने वाला है। और दूसरा दाव का इलाज, एक दाव तो ये होता है कि ना उम्मीदी में डालता है, तेरा नमाज, तेरा ध्यान नहीं था, तू किधर था, तेरा दिल किधर था, तुझे क्या मिलेगा नमाज, तो इस्तिगफार कर लो। शैतान का दूसरा दाव ये होता है कि जब इंसान इबादत कर लेता है तो उसको तकब्बुर और घमंड में मुब्तला कर देता है। ये दूसरा दाव, या तो मायूस में या तो तकब्बुर में। और उससे कहता है कि वाह, तूने बड़ी अच्छी और आला दर्जे की इबादत अंजाम दी और अब तो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों में शामिल हो गया। एक मरतबा वो था ना, अरबी में एक मकोला मशहूर है, सल्लल हाइकी रकअतैन वंतज़िरुल वही। एक मरतबा एक जुलाहे ने 2 रकाते नमाज पढ़ ली और फिर वही के इंतजार में बैठ गया कि कब मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। ये तकब्बुर, यानी इतना बड़ा बन गया 2 रकात नमाज पढ़। इसी तरह हम जैसे आदमी को जब थोड़ी बहुत इबादत की तौफीक हो जाती है तो दिमाग में खन्नास पैदा हो जाता है कि इसका भी इलाज ये है कि जब इबादत कर लो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मैंने नहीं किया, अल्लाह ने करवा, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हम क्या, हमारी इबादत क्या, उन्हीं की तौफीक से इबादत अंजाम पाई है। हमारी क्या हकीकत है कि हमसे कोई इबादत अंजाम पाए। जो कुछ हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ हुआ हुआ करम से तेरे, और जो कुछ होगा तेरे करम से होगा, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर जर्रा नहीं हिल सकता, जर्रा। इसलिए इबादत के बाद कहो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने इबादत की तौफीक अता फरमाई। बहरहाल हर इबादत के बाद कहो अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद अस्तग़फिरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह के जरिए अल्लाह ताला की तौफीक पर शुक्र अदा करना और अस्तग़फिरुल्लाह के जरिए अपनी कोताही पर इस्तिग़फार करो कि हमसे सही तौर पर इबादत अंजाम नहीं पाई। बस ये दो चीजें जमा कर लो तो उस पर शैतान कहता है कि उसने मेरी कमर तोड़ दी। शैतान कहता है क्या आपने मेरी कमर तोड़ दी, अब मेरे लिए इस मौका पर बहकाने का कोई रास्ता नहीं है जी, कोई रास्ता नहीं। ये तो हदीस में मौजूद है कि हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद 3 मरतबा इस्तगफार किया करते थे, अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते थे। अब सवाल पैदा होता है कि इस्तगफार करने का कौन सा मौका है, क्योंकि इस्तिगफार तो किसी गुनाह के बाद किया जाता है न कि इबादत के बाद, लेकिन यहाँ नमाज पढ़ने के फौरन बाद इस्तिगफार पढ़ा जा रहा हो। क्यों? इसलिए कि इस्तिगफार के जरिए इस बात का इकरार हो रहा है कि अल्लाह जैसी नमाज पढ़नी चाहिए थी वैसी नमाज हमसे बन नहीं पड़ी, या अल्लाह उस पर हमारी मगफिरत फरमा। इस्तिगफार तो इसलिए कि जैसा उसका अदा करने का हक था अदा नहीं की, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कि जैसा उसका हक था अदा नहीं किया, अल्लाह ने तौफीक दी उस पर तो अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसा हक था अदा नहीं किया उस पर इस्तिगफार की कमी कोता ही रह गई, तौफीक की वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल ये इस्तिगफार बड़ा अजीब तिरियाक अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है कि हर वक्त इस्तिगफार करने की आदत डालनी चाहिए। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं दिन में 70 मरतबा इस्तिगफार करता हूं। उलमा ने फरमाया कि 70 का आदत तकसीर के लिए है, कसरत बताने के लिए, तहदीद के लिए नहीं है। यानी मैं बहुत कसरत से इस्तिगफार करता हूं तो जब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुनाहों से मासूम थे, इस पर एक बात अल्हम्दुलिल्लाह एक बात की ताइद भी मिल गई कि बीच में कयामत की निशाने में बताया था ना, फरमाया मेरी उम्मत के 70-72 फिरके होंगे, है ना, 73 फिरके होंगे, एक कामयाब होगा, तो उसमें भी सिर्फ तहदीद नहीं है, कसरत बताना मकसूद है। इसलिए भी आगे बढ़ गए तो बोले भाई ये कैसे हो गया आगे, आपने तो बताया, असल में तहदीद नहीं, ये कसरत बताना कि इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ये देखो इस्तिगफार जो है 70 मरतबा आप पढ़ते थे तहदीद नहीं है, बल्कि कसरत, आप ज्यादा ज्यादा इस्तिगफार पढ़ते थे तो जो गुनाहों से मासूम थे वो कसरत से इस्तिगफार फरमाते थे। तो हम आपको तो हर वक्त इस्तिगफार करना चाहिए, हम और आपको तो हर वक्त इस्तिगफार करना चाहिए, इसलिए कि हम तो हर वक्त गुनाहों और खताओं में मुबतला रहते हैं, वरना कम अज कम इबादत की कोताहियों में मुबतला रहते हैं। उसका इलाज इस्तिगफार है कि अल्लाह माफ कर। अब जाहिर बात इस्तिगफार से तकब्बुर नहीं आएगा ना, क्योंकि क्योंकि उसको अपना अमल, आज हमारे इस्तिगफार कैसा है, इस्तिगफार पर भी इस्तिगफार की जरूरत है। आज हमारा ऐसा है क्यों कि वो भी गफलत में हो रहा है। भाई इस्तिगफार को तो कब, जो अमल किया है उसकी कमी का इस्तेहजार करके फिर इस्तिगफार करेंगे तो दर्जात मिलता है। आज तो बस वैसे ही बोले अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, बोले किस बात का, कोई अपनी कमी का तो इस्तेहजार रखे। जैसे जिस तरीके से मुझे अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना चाहिए नहीं हो रहा, जैसे मेरा आज दिन गुजारना चाहिए वैसा दिन नहीं गुजरा, आज मुझे जैसा अमल, तो उस पर इस्तगफार है। माफ कर दे। तो ये है, तो इंशाल्लाह यहां तक ही रखते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह कल करें। मुराकबा कर ले।